जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी जयो रा। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमधीष्टिवाइनग्रे सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमधीष्टिवाइनग्रे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की गोलेकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 20। हम 19वां श्लोक पहले जस्ट उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसके पश्चात। तो 19वां श्लोक में वर्णन आता है, राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु श्री भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया। श्लोक क्रमांक 20। प्रस्थानाभिमुखोप्येनम् अनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतष्ठे सुहृत्सताम्। प्रस्थानाभिमुखोप्येनम् अनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्। प्रस्थानाभिमुखोप्येनम् अनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्। Matajis, word to word translation. Prasthan jane hetu abhimukha udyat api yadyapi enam unko anugraha daya se vilambitah rok liya gaya pashyan dekhte hue पद्मपलाशक्ष जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है, न नहीं प्रतस्थे प्रस्थान किया सुहृत शुभेच्छु सताम भक्तों के। ट्रांसलेशन अनुवाद, श्री भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतना वत्सल हो चले थे कि वे गए नहीं। अपने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी हैं। तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य, यहां पर सुहृत सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त पर सदैव वत्सल रहते हैं और सदैव उसके हित के लिए सोचते रहते हैं। ये पक्षपात नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान सबके लिए समान है, सम्मोहम सर्वभूतेषु, किंतु जो उनकी सेवा में लगा हुआ है उसके प्रति वे विशेष वत्सल रहते हैं। किसी दूसरे स्थान पर श्री भगवान कहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में वास करता है और वे भी सदैव भक्त के हृदय में वास करते हैं। अपने विशुद्ध भक्त के प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यह वात्सल्यता न तो अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, और न ही यह किसी प्रकार का पक्षपात है। उदाहरणार्थ, पिता अपने अनेक पुत्रों के होते हुए भी कभी कभी उस एक पुत्र के प्रति विशेष स्नेह रखता है जो उसके प्रति विशेष लगाव रखता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से श्री भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। श्री भगवान भक्त से दूर नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु केवल भक्त ही उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। और इस प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण श्री भगवान से आदेश प्राप्त करता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है और न श्री भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो भक्त इच्छुक है वो पीछे चंदन की सेवा कर सकते हैं। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में आ रहा है, जहाँ पर पृथु महाराज, हम कई दिनों से चर्चा इस पर सुन रहे हैं अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, और विशेष रूप से जो पृथु महाराज का ये गुण है कि कैसे उन्होंने यह यज्ञ जो कर रहे थे और बार बार इंद्र उनको इस यज्ञ में दुविधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के आग्रह करने के पश्चात पृथु महाराज अपने यज्ञ को 99, उनका 100 यज्ञ पूर्ण होने वाला था, किंतु पृथु महाराज ब्रह्मा जी के आग्रह के पश्चात उन्होंने 99 यज्ञ पे ही अपना यज्ञ रोक दिया। ठीक है, अब हम यही दृष्टिकोण देखेंगे कि भक्त, कोई भी भगवान का जो भक्त होता है, विशेष रूप से जब हम भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं और इस भौतिक संसार से परे जाना चाहते हैं, तो फिर क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वो हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और ये बहुत सुंदर ये श्लोक है जहाँ पर पृथु महाराज, अब उनका भगवान पृथु महाराज को दर्शन दिए, पृथु महाराज को उपदेश दिए, और उपदेश देने के पश्चात अब पृथु महाराज भगवान विष्णु वहां से जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो जा रहे हैं तो वो पृथु महाराज के भक्ति से, पृथु महाराज के गुण से इतना आकर्षित हो गए, इतना भाव विभोर हो गए कि वे जा नहीं पा रहे हैं। तो यहां पे पृथु महाराज की भक्ति इतनी तीव्र है, उनकी गुणों के कारण भगवान जाने का इच्छा तो कर चुके हैं, तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन वह पृथु महाराज के साथ, उनके संग में कुछ और देर बिताना चाहते हैं, कुछ और देर रहना चाहते हैं। तो ये भगवान का देखिए कितना स्नेह भरा संबंध है। हम प्रत्येक दिन संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं कि भगवान का लेश मात्र थोड़ा कृपा हमें मिल जाए, थोड़ी भक्ति हमें मिल जाए, और इतने सारे योगी तपस्वी ऋषि मुनि है, भगवान के एक कृपा कटाक्ष के लिए, एक दर्शन के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान जो है अपने भक्त को दर्शन तो दे दिए, लेकिन वे जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे अपने भक्त के भक्ति से इस समय बंधे हुए हैं, उनको बांध दिया है। तो ये भक्ति की शक्ति है। हम प्रत्येक संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग प्रकार का धन, अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य संचित करने का प्रयास करता है ताकि इस संसार में कुछ लोगों को नियंत्रित कर सके। ठीक है, हर एक व्यक्ति इस संसार में आया ही क्यों, पहले हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति संसार में आया ही क्यों, स्वामी बनने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्वामी बनना है। तो हम भगवत धाम में थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान की गुणगान कर रहे थे, लेकिन ये इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हुई कि हमारी भी होनी चाहिए, भगवान की ही क्यों, हमारी भी थोड़ी होनी चाहिए। सदैव भगवान की जय जयकार हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, थोड़ा हमें भी होना चाहिए। तो ये जब ईर्ष्या और ये इच्छा उत्पन्न हुआ, तब भगवान ने कहा ठीक है भैया, यहाँ तो नहीं हो सकता, जाओ, आपके लिए भौतिक संसार बनाया जाता है, वहां पे जाइए आप। और भगवान ने केवल भेजा ही नहीं, पूरा नियम, पूरा वेद के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कैसे आप धर्म करोगे तो आपको अर्थ मिलेगा, अर्थ प्राप्त करोगे तो आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और फिर आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। लेकिन मूल जो कारण है हम इस संसार में है, वो है आनंद भोगने के लिए, हम स्वामी बनना चाहते हैं। ठीक है, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारबलिकाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमना। तो जब तक हम अपने इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं, इस इच्छा को, इस भावना को काम कहते हैं। और जब यही इच्छा को हम भगवान की सेवा में केंद्रित करते हैं, तब इस इच्छा को प्रेम कहते हैं। ठीक है, जब हम भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तब इस इच्छा को प्रेम कहते हैं। तो हम इस संसार में स्वामी बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति, लड़का आया, वो पूछा कि मैं बोला कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। मैंने बोला क्यों क्यों बनना है आपको IAS ऑफिसर। ठीक है, आपके परिवार में कोई आईएएस ऑफिसर है? बोला नहीं। आपके वंशज में कोई आईएएस ऑफिसर है? बोला नहीं। तो बोले तुम्हारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न क्यों हुई कि तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है? तो वो बोला नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तब तो मैंने बोला ये तुम्हें लगता ही नहीं, ये पिक्चर देख देख के तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है। जब आप देखते हो कि कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई हीरो है, वो 100 लोगों को मार रहा है, 50 लोग सल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नियंत्रण करने की शक्ति, ऐसा लोगों को अपने वश में करने की जो इच्छा है, ये इच्छा से तुम आकर्षित हुए हैं, इसलिए तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ना कि तुम्हारी अंदर स्वाभाविक इच्छा है कि मुझे लोगों का रक्षण करना है, लोगों को बचाना है। ये इच्छा नहीं, ऐसा कोई इच्छा है नहीं। इच्छा उत्पन्न होती है दूसरों को देख के, वो आकर्षण को देख के। उसी प्रकार से बहुत लोगों को डॉक्टर बनने की इच्छा होती है। तो मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो ये बहुत लोगों से पूछता था, लोगों से पूछता था कि भाई तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो उन लोग ये उत्तर देते थे कि क्योंकि नाम है, पैसा है, इज्जत है, ठीक है। और खास करके आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते हो तो कितना भी बड़ा वकील, कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर क्यों ना होने दो, हॉस्पिटल में आके नम्र होके अपना पेशेंट का रसीद लेके आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि आप आके डॉक्टर के सामने समर्पण, वो भावना मुझे देखना है। तो इस भावना से बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत लोग को इच्छा है हीरो बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स है, इतने सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। तो ये स्वामी बनने की भावना जो है, इसके कारण हम इस संसार में आए हैं। और कोई व्यक्ति स्वामी बन भी जाता है, पहले तो इच्छा हमारा, उसका जो फाउंडेशन है वही गलत स्तर पे है। और जब कोई व्यक्ति इसको प्राप्त भी कर लेता है तो कितने लोगों को नियंत्रित करता है? 50 लोग को, 100 लोग को, 1000 लोग को, 2000 लोग को, कितने लोगों को नियंत्रित? अगर वो राजा भी बन गया, एक देश का प्रधानमंत्री भी बन गया, तो भी ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, और वो भी कितने साल तक? 4 साल, 5 साल, उसके बाद नामो निशान नहीं रहता। इतने बड़े बड़े राज्य आए, साम्राज्य आए, आज उसका नामो निशान वहां पर नहीं है। मैं बहुत बार पूछता हूं कि कितने लोगों को हम में से हमारे दादा के दादा का नाम याद है, पितामह के पिता जो दादा के दादा है, ठीक है, कितने लोगों को हम में से नाम याद है? नहीं याद है। हम पूरा जीवन नाम कमाने में गंवा देते हैं, आने वाली 4 पीढ़ी हमारा नाम तक याद नहीं रखेगी। और पूरा संसार हम लोग कमा देते हैं कि हमको कुछ नाम कमाना है, और थोड़ा ज्यादा नाम कमा लिए तो 6 पीढ़ी बाद आपको याद नहीं किया जाएगा। भगत सिंह नाम का एक बहुत प्रसिद्ध, एक बार सारे डायरेक्टर को पता नहीं क्या हो गया था, जब मैं 10वीं कक्षा में था तब सारे डायरेक्टर्स को भगत सिंह के ऊपर मूवी बनाने की बहुत इच्छा हो गई थी। सारे लोग, 5-6 मूवी बन गया भगत सिंह के ऊपर। और भगत सिंह की जो वंशज है वो पंजाब में चाय बेचती है, और ये मूवी बना के करोड़ों करोड़ों रुपया डायरेक्टर्स कमा लिए। तो किसी को ये इच्छा नहीं है, लेकिन स्वामी बनने की इच्छा है, वो भी हम कुछ हद तक ही प्राप्त कर सकते। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस इच्छा को त्याग कर देता है और भक्ति करने लगता है, तब हम भगवान को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। भक्ति से क्या इच्छा? एक बार एक कहावत है, एक मेरे एक लेक्चर में सुना था कि एक बार जो अमिताभ बच्चन एक गाड़ी से जा रहे थे, और उन्होंने कहा आज क्या करो, ड्राइविंग आप नहीं मैं करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, ड्राइवर पीछे बैठ गया और अमिताभ बच्चन ड्राइव कर रहे थे। तो सिग्नल पे आया, ट्रैफिक पुलिस देखा अमिताभ बच्चन ड्राइव कर रहे हैं, तुरंत उसने आगे के सारे ट्रैफिक सिग्नल पे बोला सब सब सिग्नल खोल दो, आगे के जितने रास्ता है सब क्लियर कर दो। तो बोले भैया कौन आ रहा है, एमएलए आ रहा है? बोले नहीं उससे भी बड़ा। तो बोले एमपी आ रहा है? बोले उससे चीफ मिनिस्टर आ रहा है? बोले उससे भी ना है। कौन आ रहा है? बोले पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन अमिताभ बच्चन ड्राइवर है। तो इतना बड़ा व्यक्ति ड्राइवर है तो एक स्वाभाविक है कि भैया पीछे कौन बैठा है। तो यही सोचो, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक तीनों लोकों के स्वामी अर्जुन के सारथी बन के बैठे हुए हैं, ड्राइवर बन के बैठे हुए हैं। तो भक्त की शक्ति क्या होता है? इस संसार में लोग क्या करते हैं, इस संसार की कुछ वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, कुछ हद तक उसको नियंत्रण करते हैं, कुछ समय तक लोग उनको जय जयकार करते हैं, और आने वाले कुछ समय के पश्चात ना वो रहते हैं, ना उनका नाम रहता है, ना उनका वंश रहता है, कुछ नहीं रहता। लेकिन हम इसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं और वापस से इसी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को समर्पण कर देता है, भगवान की भक्ति करता है, तो अपनी भक्ति की शक्ति से यहां पर हम देख रहे हैं पृथु महाराज की शक्ति इतनी है कि भगवान को वो रोक कर रखे हुए हैं। भगवान जाना चाहते हैं लेकिन वो रुके हुए हैं। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बनकर बैठे हुए हैं, तो जब कर्ण को बोला गया कि आपको अर्जुन से युद्ध करना है, तो कर्ण ने एक कहा कि मैं अर्जुन से युद्ध तो करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अर्जुन से युद्ध करने के लिए मेरी क्षमता तो है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरी शक्ति क्या है, पूरा ये रथ के ऊपर निर्भर होता है, केवल योद्धा के ऊपर नहीं होता, तो ड्राइवर के ऊपर भी बहुत कुछ होता है। तो अर्जुन के टक्कर में मैं तो हूं, लेकिन उनका ड्राइवर जो है बहुत पावरफुल है, कृष्ण। तो मुझे भी कोई कृष्ण के जैसा महान क्षत्रिय मेरा ड्राइवर बनेगा तब तो कुछ बात बनेगी। तो फिर बोला कौन होगा? तो बोले महाराज शाल्य। वो अगर ड्राइवर बनेंगे तो अब क्षत्रिय हैं, अब क्षत्रियों के लिए सम्मान, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। तो दुर्योधन गए और बोले कि भैया आप कर्ण के थोड़ा ड्राइवर बन जाओ, अर्जुन से युद्ध है। तो वो ड्राइवर की जो ये ऑफर था, ये जो प्रस्ताव था, ये सुनकर इतना क्रोधित हो गए, इतना उत्तेजित हो गए, बोले मुझे समझ के क्या रखा है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं चाहूंगा तो ये युद्ध खुद अपने दम पे जीत सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे सारथी बना रहे हो, इस पद को स्वीकार करने से अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। ये क्षत्रिय है। और यहाँ पे कृष्ण जो पूरे संसार के क्षत्रियों से सर्वश्रेष्ठ हैं, पूरे संसार के स्वामी हैं, वे अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भक्ति से बंधे हुए हैं। तो संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है तो इस संसार के किसी स्थान को प्राप्त करने का प्रयास मत करो, ना तो ये संसार स्थाई है ना तो स्थान स्थाई है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त करो। ऐसा भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं हमसे आकर्षित हो जाएंगे और वो स्थान सबसे श्रेष्ठ है। भक्त क्या होता है? और किसी वस्तु की और किसी इच्छा लाभ की इच्छा नहीं रखता, ठीक है। तो एक बार एक जोहरी था, वो प्रभु श्री रामचंद्र को पास आता है और एक बहुत सुंदर मोतियों से घड़ित एक हार प्रभु श्री रामचंद्र को देता है। तो रामचंद्र जी वो जब हार आते हैं तो स्वाभाविक है, जब आपको बहुत प्रिय वस्तु मिलती है तो आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को देते हैं, ये गिफ्ट का रूल है। तो फिर भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया, वो हार हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी वो हार को लिए, उनका जो रूप है वो वानर का है, वो हार को लिए, दांत से तोड़ दिए। अब एक एक मोती को दांत से तोड़ के देख रहे हैं और फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। अब जौहरी बेचारा वहां पे खड़ा है, बोल रहा है ये क्या चल रहा है, मैंने आपको तो उससे रहा नहीं गया, तो बोला अरे प्रभु मैंने आपको इतना कीमती हार दिया और आप ऐसे वानर को दे दिए जिसको इसका कीमत ही नहीं है। तो उसे समझ ही नहीं पा रहा है कि मैंने क्या हार दिया, इतना मूल्य है, इतना कीमत है। और उसने हनुमान जी से पूछा, अरे जब तुमको कीमत नहीं पता तो क्यों तोड़ रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा किसी भी वस्तु का जो मोल होता है, जो कीमत होती है, वो तभी होती है, अमूल्य होता है जब उसमें भगवान श्री रामचंद्र का वास होता है। मैं देख रहा हूं इसमें किसी में भगवान श्री राम का नाम नहीं है, इसमें वास नहीं, इसलिए इसको फेंक रहा हूं, ये मेरे किस काम का? तो फिर उस जोहरी ने उनको चैलेंज किया, ठीक है, कि यदि तुम प्रत्येक वस्तु जिसमें भगवान का वास नहीं दिखता प्रत्यक्ष रूप में, उसको यदि त्याग दोगे, क्या तुम्हारे इस शरीर में भगवान का वास है क्या? तब हनुमान जी कहते हैं अवश्य, अभी तक तो मैं यही सोच रहा हूं। तो उन्हें कहा ठीक है, अगर तुम्हें भगवान का वास है तो सभी को यहां पे प्रत्यक्ष रूप में भगवान का तुम्हारे जो वास है वो सबको दिखाओ। तब हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी विलंब के तुरंत अपना सीना चीरते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता का दिव्य रूप उनके हृदय में लोगों को दिखता है। तो ये है हनुमान जी। कोई भी ऐसी वस्तु हो तो ये भक्त का ये लक्षण है, ठीक है, वो इस संसार के किसी वस्तुओं के पीछे नहीं भागता जिसमें भगवान का वास नहीं है, वो उसको सहज रूप से त्याग देता है, ठीक है, उसको किसी भी ऐसे वस्तुओं की इच्छा नहीं होती, लालसा नहीं होती। तो एक सुंदर प्रसंग आता है भागवतम में, जय विजय आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ धाम में, ठीक है, जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल है, सातवें जो अंतिम जो द्वार है वहां पे जय विजय खड़े हुए हैं, ये कर रहे हैं, द्वार की रक्षा कर रहे हैं। और तभी वहां पे चतुष्कुमार आते हैं। तो चतुष्कुमार स्वाभाविक रूप से वैरागी हैं, भगवान एक उच्च स्तर के मुक्त व्यक्ति हैं, भक्त नहीं हुए हैं अभी तक। तो वे जब वैकुंठ में प्रवेश किए तो सभी जो वहां पे द्वार थे वो अपने आप सभी लोगों ने उनको पास किया, ठीक है, आप आगे जा सकते हो, आप आगे सकते हो। तो ये वेदों में एक नियम है, ठीक है, वेदों का नियम क्या है, शास्त्र में वर्णन है कि जब कोई सन्यासी है कहीं पे जाता है तो उसको किसी पास की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, उसका जो कपड़ा होता है उसका नेचुरल आई कार्ड होता है, ठीक है, तो वो किसी भी स्थान पे बिना अनुमति के जा सकता है, कोई उसे रोकना नहीं चाहिए। तो इसी भावना से चतुष्कुमार जा रहे हैं, सभी द्वार को पार करते हुए आगे चलते गए और अंत में छह द्वार के जो द्वारपाल थे उन्होंने उनको रोका नहीं। अब सातवें द्वार पे जब गए तो जय विजय जो थे उन्होंने उनको रोक लिया, ठीक है। अब ये भी एक बहुत आश्चर्य की बात है, ठीक है, कि जय विजय ने ऐसे किया क्यों? तो प्रभुपाद भी कहते हैं बहुत आश्चर्य की बात है, आचार्य गण कहते हैं ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन उन लोगों ने किया। परीक्षित महाराज वन में जा रहे थे और श्रमिक ऋषि पे उन्होंने सांप उनके गले पर डाला, ये बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा किया क्यों? पर किया, क्यों किया? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। तो कभी कभी जो भगवान के भक्त होते हैं बाह्य रूप से हमें दिखेगा कि अरे ये तो बहुत गलत कार्य कर रहा है, ये तो बहुत ही नीच कार्य कर रहा है, बहुत ही विपरीत चल रहा है समाज के नियम से, लेकिन ये भगवान की इच्छा हो सकती है ये हम नहीं जानते, और इसमें कई बार हम गलती कर बैठते हैं। सब लोग, हम लोग जो साधारण रूप से भक्ति में नहीं आते हैं, जब तक हमें लगता है कि भीष्म पितामह भी ये बहुत ही सब कौरवों की ओर से थे और अधर्मी थे, क्योंकि अधर्म के साथ उन्होंने युद्ध किया, तो हमें भी लगता है कि भीष्म पितामह गलत ओर से युद्ध कर रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक महाजन है। क्यों? अगर वो अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं, इतने लोगों के कृष्ण के समक्ष खड़े होकर पांडवों की इतने सारे सेनाओं का वध कर रहे हैं, तो फिर वो भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं? और भक्ति ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ भक्त महाजन कैसे हो सकते हैं? ये हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा थी कि भीष्म पितामह भगवान के विपरीत खड़े हो, और भगवान के विपरीत खड़े होकर पांडवों के विपरीत युद्ध करके पूरे संसार को ये स्थापित करे, ये संदेश दे कि संसार का सबसे बड़ा योद्धा, अजेय योद्धा, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, भगवान परशुराम भी जिसको परास्त नहीं कर सकते, वो भी यदि कृष्ण और भगवान के भक्तों के विपरीत खड़ा हो जाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। ये समझाने के लिए भीष्म पितामह अधर्मियों के संग में इतने दुख को झेलते हुए वे भगवान की विपरीत खड़े हैं संसार को संदेश देने के लिए। ठीक है, तो जय विजय जब, तो वहां पे अब जय विजय ने ये गलती कर दी, उन्होंने रोक दिया, अब तुरंत चतुष्कुमार वे भक्त नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी तक वे एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुक्त स्तर पे हैं, लेकिन भक्त नहीं है। और जय उन्होंने तुरंत चतुष्कुमार को बोला कि तुम्हारे अंदर द्वंद्व है, द्वेष है, तुम वैकुंठवासी नहीं हो, तुम यहां पर रहने के लायक नहीं। और तुरंत उन्होंने जय विजय, जो कि वैकुंठ के द्वार के द्वारपाल है, उनको शाप देते हैं कि जाओ, तुम्हें इस भौतिक संसार में जाओ और तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस की योनि में जाओ। अब ये तो बहुत बड़ा शाप हो गया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ये शाप दिया और भगवान विष्णु को जैसे ही ये पता चला कि ये शाप चतुष्कुमारों ने मेरे द्वारपालों को दिया है, तुरंत वो दौड़ते दौड़ते वहां पर आए, और अकेले ही नहीं आए, माता लक्ष्मी को भी साथ में लेके आए। अब चतुष्कुमारों की इच्छा क्या थी? मुझे भगवान का दर्शन लेना है। भगवान के दर्शन लेने में बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए क्रोधित हो गए। भगवान बोले चलो मेरा भी दर्शन लो, माता लक्ष्मी का भी दर्शन लो, साथ में सबका दर्शन लो, चिंता मत करो। ठीक है, तो यहां पे जब आ रहे हैं, तो जब भगवान आ रहे हैं तो भगवान के चरणों पे जो तुलसी है और भगवान के चरणों का जो धूल है, उसमें से जो हवा, वैकुंठ की दिव्य जो हवा वहां से बह रही है, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, तुलसी को स्पर्श करते हुए, अब ये जो दिव्य सुगंध है वे चतुष्कुमारों के नासिका में प्रवेश करती है। तो ये भगवान के चरणों का अब कृपा उन्हें प्रथम बार प्राप्त हुआ है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। तो कहते हैं संक्षोभम अक्षर जुषम पिचित्त तन्वो। तो जब ये तुलसी, ये जो सुंदर हवा चतुष्कुमारों के नासिका में प्रवेश करती है, तो तुरंत उनके हृदय में परिवर्तन आता है। भले ही वो ज्ञानी थे, ठीक है, लेकिन तुरंत उनके हृदय में ये परिवर्तन आता है, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जैसे ही विष्णु और माता लक्ष्मी आती है, तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर वाक्य संदेश इनको देते हैं, किनको? चतुष्कुमारों को। बहुत ये सुंदर प्रसंग है। अब देखो दोनों भगवान के संगी हैं, ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है हम देख रहे हैं, इंद्र और पृथु दोनों भगवान के ही लोग हैं, उसी प्रकार से वैकुंठ में भगवान अब आए हैं, यहाँ पे चतुष कुमार है और यहाँ पे जय विजय है, दोनों भगवान के ही भक्त हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिद्धांत स्थापित क्या होता है कि भगवान के निकट कौन है, ठीक है। भक्त तो अलग अलग स्तर के होते हैं, लेकिन भगवान से अधिक, भगवान को अधिक प्रेम किस पर है और भगवान से अधिक निकट कौन है, ये पूरा जो ये लीला है, जो पृथु महाराज की लीला है, ये दिव्य संदेश यहाँ पर हमें दिखता है और वही हमने यहाँ पे समझते। तो पृथु महाराज ने ये त्याग दिया कि मुझे सेंचुरी नहीं बनाना है, 100 यज्ञ जो है मैं नहीं करूँगा, 99 पे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना ये जो रिकॉर्ड है या अपना जो ये स्तर है इसका त्याग करूंगा। तो ये जो त्याग की भावना है इससे बहुत प्रसन्न होते हैं कौन, भगवान विष्णु, ठीक है। अब यहां पर जब भगवान आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, आते ही वे चतुष कुमारों को कहते हैं कि मैं अपने सेवकों की ओर से आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने सेवकों की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। तो इसका अर्थ क्या है, मेरे निकट कौन है, मेरे सेवक, और आपसे मैं माफी मांग रहा हूं, ठीक है। यानी जितना निकट मेरे सेवक मेरे लिए हैं उतना इस समय आप नहीं हो, और कहते हैं कि मेरे सेवक जो है इनकी गलती का पूरा उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, इनकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूं। और फिर कहते हैं भगवान बहुत सुंदर रूप से कहते हैं कि मैं ये तीनों ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सारी योग शक्ति का स्वामी हूं, गंगा जो पूरे संसार को पवित्र करने की शक्ति रहती है वो गंगा मेरे चरण को स्पर्श करके आगे बढ़ती है, भगवान शिव भी उसको अपने मस्तिष्क पे धारण करते हैं, मैं वैष्णवों के चरणों के धूली को अपने मस्तिष्क पे लगाता हूं। तो यहां पे भगवान बोल रहे हैं कि वैष्णव जो होते हैं, साधारण जो भगवान के भक्त होते हैं, कितने श्रेष्ठ होते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो भगवान के महान भक्तों का एक छोटा सा संग प्राप्त करना ये बहुत विशेष बात है, साधारण रूप से प्राप्त नहीं होता। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरणों में इतनी शक्ति है कि मैं सबको पवित्र कर सकता हूं, गंगा सबको पवित्र करती है, शिव जी भी जिसको माथे पे धारण करते हैं, मैं ऐसा महान, तो भगवान अपनी स्तुति कर रहे हैं, मैं इतना महान हूं, और फिर क्या कह रहे हैं, मैं अपने भक्तों के चरण का रज अपने सिर पे लेता हूं। तो फिर और कौन है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे भक्तों के चरण का रज अपने सिर पे नहीं लेगा, ठीक है। तो ये भगवान भक्तों का स्तर स्थापित कर रहे हैं, और फिर भगवान और क्या कहते हैं, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्य प्रेक्षालावार्थ इतरे नियमान वहन्ति। भगवान कहते हैं यत् सेवया, मैं अपने भक्तों की सेवा करने से मुझे क्या शक्ति प्राप्त हुई है। अब प्रश्न उठता है कि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं, मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, अपने भक्तों की सेवा करने से मुझे क्या शक्ति प्राप्त हुई है कि मेरे चरण को माता लक्ष्मी कभी छोड़ती ही नहीं, मुझे लक्ष्मी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, न शरीर विरक्तिम अपिमाम विजहाति यस्य, मुझे माता लक्ष्मी से कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी मेरे चरणों को हमेशा पकड़ के रखती है, सेवा करती है, क्यों, क्योंकि मैंने भक्तों की सेवा की है। ये गुण मुझे कैसे आया, भक्तों की सेवा करके। तो इस संसार में हमें समझना है कि ये भक्त जो भगवान के पार्षद होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, इनका एक विशेष स्थान होता है, ठीक है, इनकी सेवा करने से, इनसे सुनने से, इनके दर्शन मात्र से भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है, पहले भगवान के भक्त को प्रसन्न करना होगा। यदि कोई व्यक्ति सीधा सीधा भगवान के पास जाने का प्रयास करेगा बिना भक्त के, बिना गुरु के, तो क्या होगा? पिटेगा। तो रामायण में वर्णन आता है, राम और लक्ष्मण जब आते हैं, तो राम और लक्ष्मण जब आ रहे हैं तो सुग्रीव से जब मिलते हैं, तो सुग्रीव राम और लक्ष्मण को देखते हैं और राम जी को, राम उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और तुरंत सुग्रीव उनको एक आसन रखते हैं राम जी को बैठने के लिए। तो राम जी से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मार्ग क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण गुरु है, ठीक है। बिना लक्ष्मण के, बिना गुरु के, बिना शेष के, बिना बलराम जी के, आप कृष्ण से, राम से, विष्णु से संबंध स्थापित कर ही नहीं सकते। अब ये भगवान ने देख लिया कि ये मेरा फेवर तो चाह रहा है, ये मुझसे संबंध तो स्थापित करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मण को इसने दुर्लक्ष कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ बोला नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि जाओ आप वाली से युद्ध करो, मैं तुम्हें रक्षण प्रदान करूंगा। सुग्रीव ने कहा ठीक है। और सुग्रीव तो फिर बहुत लीला है, हम विस्तार में नहीं जाएंगे। तो सुग्रीव पूरा साहस के साथ, पूरा भगवान के ऊपर विश्वास के साथ जाता है, वाली को युद्ध के लिए ललकारता है। वाली आता है और बोलता है कि अरे आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा, आज समझ जाएगा कौन असली महान है। तो वाली जब आता है और सुग्रीव तो पूरा विश्वास में है कि आज राम जी वहां पे खड़े हैं और युद्ध में इसका वध करेंगे। दोनों का युद्ध प्रारंभ होता है और वाली उसको इतना पीटता है, उठा उठा के पटकता है। और वो देख रहा है कि राम जी कुछ कर क्यों नहीं रहे, और सोच रहा है कि शायद अब कुछ करेंगे। और वो पिटा जा रहा है। फिर उसको पता चल गया कि और अगर थोड़ी देर रहा तो शायद युद्ध करने के लिए बचूंगा ही नहीं। तो वो वहां से चले जाता है और फिर राम जी को आके बोलता है, अगर तुम्हारा प्लान नहीं था तो बता देते, मैं नहीं जाता पिटने को। तुमको अगर मारने का कोई तुम्हारा ऐसा विचार नहीं था तो मुझे बताते थे ना, मैं क्यों जाता बिना मतलब का अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए। तब राम जी कहते हैं, देखो आप दोनों जुड़वे भाई हो, मुझे समझ में नहीं आता कौन वाली है कौन सुग्रीव, और मेरा अस्त्र तो अमोघ है, मैं चला दिया तो फिर वापस उसको कंट्रोल जेड नहीं दबा सकते, उसको हम वापस पीछे नहीं ले सकते। एक बार गया मेरा तीर तो वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य भेदेगा। तो आप दोनों सेम दिख रहे हो, तो कृपया करके कुछ तो आप कुछ माला वाला पहनो। तो फिर उन्होंने गए, तब वो लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, लक्ष्मण उनको माला पहनाते हैं। जब लक्ष्मण उनको माला पहनाते हैं तब गुरु की कृपा प्राप्त हो गई। और जब वापस जाते हैं तब राम जी वाली का वध करते हैं। तो यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं है, हम भगवान की, राम की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पे भगवान विष्णु आए हैं और चतुष कुमारों को वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अरे भैया इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो। और बहुत सुंदर सुंदर वाक्य कहते हैं और अंत में वे चतुष कुमारों को क्या कहते हैं कि मुझ पर एक कृपा करो। ठीक है, भगवान चतुष कुमारों को कह रहे हैं कि मुझ पर एक कृपा करो कि मेरे इन भक्त जो हैं वे अधिक समय तक इस संसार में ना रहे और शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाए। देखो भगवान का क्या संबंध है, वो कह रहे हैं कि मेरे ये जो भक्त हैं ये संसार में गए हैं, एक कृपा मुझ पर करो, इन पर नहीं, मुझ पर करो। क्यों? क्योंकि ये मेरे भक्त हैं, मेरे हैं। तो ये जो भावना होती है, भक्त इसके लिए आतुर रहता है, इसके लिए ललायित रहता है। ये वाक्य जब सुन रहे हैं तो जय विजय के बहुत आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए कि भगवान हमें अपना कह रहे हैं। और जय चतुष कुमार बिचारे बहुत दुखी हो रहे हैं कि भगवान इन्हें तो अपना कह रहे हैं और हमसे माफी मांग रहे हैं, तो हम पराये हो गए, ये अपने हो गए। यहां पे हमने इनको शाप दिया है कि जाओ तुम्हें भौतिक संसार में जाना पड़ेगा। और वो भी वहां पे भी जब शाप मिला जय विजय को, जब चतुष कुमारों ने जय विजय को शाप दिया कि मैं तुम्हें शाप देता हूं जाओ इस भौतिक संसार में तुम राक्षस बनोगे, चतुष ये जय विजय तुरंत चतुष कुमारों के चरणों में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? ये नहीं कहने के लिए कि मुझे शाप से मुक्त कर दो, गलती हो गई माफ कर दो, ये कहने के लिए नहीं गए। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर के कहते हैं, चतुष कुमार के चरणों पे गिर कर कहते हैं कि शाप दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने शाप दिया एक्सेप्टेड, शत प्रतिशत उसे स्वीकार किया गया, केवल एक कृपा हम पर करो कि जब हम इस भौतिक संसार में जाए भगवान का स्मरण हमें हमेशा रहे, भगवान का विस्मरण कभी ना हो, ये एक हमारे ऊपर कृपा कर दो। सोचो इतना बड़ा शाप मिला है, वे ये नहीं कह रहे हैं। अब वो वैकुंठ के द्वारपाल हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वो भी वापस प्रतिउत्तर में शाप दे सकते हैं, लेकिन वे चरणों में गिर के माफी मांग रहे हैं कि कृपया करके मुझे भगवान का विस्मरण ना हो। उसी प्रकार से चित्रकेतु महाराज जब आसमान में उड़ रहे थे अपने वाहन में, शिव जी को देखकर कुछ टिप्पणी कहते हैं, तो माता पार्वती उनको शाप देती है कि जाओ तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ। ठीक है, अब उन्होंने माता, तो शिव जी माता पार्वती को अपने गोद में बिठा के सभी साधुओं को कथा कर रहे थे, तो चित्रकेतु महाराज बोले अरे ये तो उचित स्वभाव नहीं है। तो दोनों उच्च स्तर के भक्त हैं, दोनों का अलग वार्तालाप है। ठीक है, तो ये एक हमें समझना चाहिए जीवन में कि जो महान भक्त होते हैं, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, उनके क्रियाओं को हम नहीं समझ सकते। भागवतम छोड़ के बाकी सभी शास्त्रों में वृत्रासुर को सभी लोग अपशब्द कहेंगे, निंदा करेंगे, राक्षस कहेंगे, लेकिन भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जहां पे वृत्रासुर की स्तुति की जाती है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो बाह्य जो लक्षण है उससे व्यक्ति का कोई मोल नहीं होता, स्तर नहीं होता, भक्ति का कोई मोल नहीं होता। उसका वास्तव स्तर क्या है कि उसने भगवान के प्रति कितना प्रेम है, भगवान को कितना प्रसन्न किया है। तो यहां पर अब जब माता पार्वती उनको शाप देती है, तुरंत चतुष कुमार, तुरंत चित्रकेतु महाराज नीचे आते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका शाप स्वीकार करता हूं। अब वहां पे वर्णन आता है कि सुख चित्रकेतु महाराज भी उनको शाप देने की शक्ति रखते थे, इतना वे महान भक्त थे, लेकिन वो स्वीकार करते हुए उसको नम्रपूर्वक क्षमा बोल मांगते हुए आगे चले जाते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि देखो ये है भगवान के भक्त। ठीक है, भगवान के वैकुंठवासी कौन है? जय विजय वहां पे द्वारपाल है, वहां पे द्वारपाल वो क्यों बने हैं? क्योंकि शाप मिलने के पश्चात भी वो नम्र होके माफी मांग रहे हैं। पृथु महाराज भगवान को अपने वश में कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि अपने इच्छाओं को त्याग कर वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। पार्वती, माता पार्वती द्वारा शाप मिलने के पश्चात भी चित्रकेतु महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया, ये भक्त के लक्षण होते हैं। ठीक है, और फिर जब माफी मांगते हैं तब भगवान विष्णु चतुष को, जय विजय को कहते हैं कि आप मैं चाहूं तो, भगवान अब जय विजय को कह रहे हैं, ठीक है, मैं चाहूं तो ये जो तुम्हें शाप मिला है इसको तुरंत ही विफल कर दो। भगवान के लिए क्या असंभव है? ठीक है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया परीक्षित महाराज को वध करने हेतु, लेकिन भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। तथा कथित इस संसार का जो सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है भगवान ने उसे विफल कर दिया। भगवान को क्या असंभव है कि वो नहीं कर सकते? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने जय विजय को कहा कि आप जाओ, चिंता मत करो, तुम सदैव मेरा स्मरण होता रहेगा तुम्हें और शीघ्र ही तुम लोग वापस आओगे। ठीक है, तो ये भगवान के भक्त हैं। तो और एक बहुत दूसरा है, आचार्यगण बताते हैं कि भगवान ने ये लीला किया ही क्यों? भगवान की इच्छा के बिना अब दो प्रकार के व्यक्ति दुख भोगते हैं। एक जो अपने कर्मों के कारण भोगते हैं, हम जैसे लोग, और दूसरा जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। अब जय विजय ने कौन सा पाप किया था जो उनको यह दुख भोगना पड़ रहा है? पांडवों तो भगवान के शुद्ध भक्त है, क्या पाप किया था कि पूरा जीवन दुख भोगना पड़ा? माता कुंती ने क्या पाप किया था कि पूरा जीवन उन्हें केवल दुख ही दुख भोगना पड़ा? भीष्म पितामह ने क्या पाप किया था? ये सब महान भक्त हैं। प्रहलाद महाराज ने क्या पाप किया था कि जब से बिचारे पैदा हुए 5 वर्ष के पश्चात इतने बार उन पर प्रहार किया गया, कभी सांपों के बीच छोड़ा जा रहा है, पहाड़ से छोड़ा जा रहा है, हाथियों के बीच छोड़ा जा रहा है, जलाने का प्रयास किया जा रहा है, भाई पाप क्या किया था? तो बहुत कभी कभी भय लगता है। सब लोग कहते हैं कि आओ भक्ति करो, भगवान का भक्त बनो। अच्छा, आपके पास उदाहरण कौन कौन है? ठीक है ना, हम कोई चीज, हम कोई पोजीशन, कोई करियर को जब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो जाके देखते हैं कि एक करियर में आगे जो है उनसे पूछते हैं। ठीक है, तो भाई आपका जीवन कैसा है? अगर वो व्यक्ति बोले कि जब से ये करियर में आया हूं मेरा जीवन भंटा ढार हो गया है, जीवन में एक समय भी मैं आनंद से नहीं हूं, केवल पीड़ा ही पीड़ा है, बहुत भयंकर जीवन है, दुर्भाग्य से भर गया है, आओ आपका स्वागत है, तो हम कहेंगे नहीं आप ही रहो, हम अपने जगह पर खुश हैं। तो उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि आओ भगवान की भक्ति करो, भगवान का भक्त बनो। बोले एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? प्रहलाद महाराज। फिर हम देखते हैं इतना दुख। दूसरे उदाहरण पांडव, इतना दुख इनके जीवन में, इतना दुख है। माता कुंती, भीष्म पितामह, परीक्षित महाराज, साप मिल गया कि 7 दिनों में आपका वध होने वाला है, तक्षक नाम का सांप आपका आके आपका विनाश करेगा। अरे जब भक्त बनने से ये मिलेगा तो मैं भक्त बनू ही क्यों? तो ये भावना भी कभी कभी आती है। लेकिन यहीं पे हम में और ऐसे भक्तों में अंतर होता है। भगवान कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं लेते जो हम पास नहीं कर सकते। और भगवान कैसे भक्तों को अपनी लीलाओं के लिए उपयोग करते हैं वो भी यहां पे वर्णन किया गया है। तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवान को युद्ध करने की इच्छा थी, भगवान की भी इच्छा होती है, तो भगवान को बहुत दिनों से फाइटिंग की इच्छा थी, थोड़ा कुश्ती लड़ता हूं। अभी लड़ने के लिए भगवान के टक्कर का कोई तो चाहिए, तो भगवान के समान शक्ति किसको होगी? जो भगवान के शुद्ध भक्त होंगे और जिसको भगवान ने शक्ति प्रदान की है वही तो भगवान के समान। अब यहां पे भगवान को रोकने की शक्ति किसमें है? भगवान के भक्त में। ठीक है, तो फिर जय विजय को इसलिए शाप मिला, इसलिए वो भौतिक संसार में जाने का उनको शाप मिला, क्योंकि भगवान को युद्ध करने की इच्छा थी। इसलिए ये जय विजय हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र बने, ताकि ये भगवान उनके साथ युद्ध कर सके। अब जब जय विजय को मान लो कि ये पता चला कि भगवान उनसे बोले कि देखो थोड़ा मेरे को फाइटिंग करने की इच्छा हुई थी इसलिए तुम लोगों को शाप मिल गया, तो जय विजय ये नहीं बोले कि भगवान मैं ही मिला था क्या? आपको फाइटिंग करने, आपको युद्ध करने की इच्छा हुई तो मैं ही मिला था क्या इतना दुख भोगने के लिए? ठीक है, इस संसार को दिखाने के लिए कि कैसे अलग अलग लीलाओं को, अलग अलग संदेश को, अलग अलग सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए भगवान माता कुंती के जीवन में इतने सारे दुख दे रहे हैं। पृथु महाराज को यहां पर हारने पे विवश कर रहे हैं ताकि पूरे संसार को दिखाया जा सका है कि भक्तों का गुण क्या होता है। तो भगवान उन्हीं भक्तों को अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उपयोग करते हैं जिनको अपना समझते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वे भगवान के इस भावना के लिए ललायित रहते हैं, भगवान के साथ ये स्तर पे संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक रहते हैं कि मुझे भगवान अपना कहे, भगवान मुझे अपना कहना चाहिए। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एक बार सनातन गोस्वामी किसी कारण से उन्हें एक चर्म का रोग हो जाता है। एक झारखंड के जो वन है वहाँ पर वे दूषित पानी पीते हैं और उनको शरीर में एक चर्म का रोग होता है और पूरे शरीर से रक्त, पूरे शरीर से पीप बहरता है, पूरा शरीर, अगर कोई जैसे कुष्ठ रोगी है वैसा उनके शरीर से पीप बह रहा है, रक्त बह रहा है। ऐसी अवस्था में उन्होंने सोचा अब ये शरीर का क्या लाभ, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, रथ के पहियों के नीचे आके अपने प्राण त्याग दूंगा। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जब प्रथम बार सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को मिलते हैं तो उनको पकड़ते हैं और जबरदस्ती आलिंगन करते हैं। जब वो आलिंगन करते हैं तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य गौर वर्ण है, तेजस्वी रूप है, उनके उस सुवर्ण अंग पर रक्त और पीप लग जाता है। ये देखकर सनातन गोस्वामी को बहुत दुख होता है, बार 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 उन्हें दुख होता है। तो सनातन गोस्वामी के इस भावना को चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, वो तो अंतर्यामी। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, बहुत सुंदर वो यही उपदेश करते हुए कहते हैं, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइये, कोटि देह क्षणे के तबे छाड़ीते पारिये। सनातन, यदि देह का त्याग करके कृष्ण प्राप होते हो तो मैं अभी इसी क्षण अपना देह छोड़ दूं और कई बार छोड़ू, लेकिन इस देह को त्याग करके भगवान नहीं प्राप्त होते। ठीक है, भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, बहुत सुंदर ये बोलते हैं, प्रभु कहे तुमार देह मोर निज धन, तुमी मोर करिया छे आत्मसमर्पण। सनातन गोस्वामी, तुम्हारा जो देह है ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें तुमने मुझ पर आत्मसमर्पण किया है, अब ये मेरा धन है। तुम्हारा देह मोरा निज धन, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके जीवन को इतना अपना समझते हैं कि उनके साथ जब चाहे जो चाहे वो कार्य करते हैं। अब सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या करूंगा, तो भगवान कह रहे हैं ये जो तुम्हारा शरीर है तुमने मुझे समर्पण कर दिया है, तो तुम उसको त्यागने का सोच कैसे सकते हो, ये मेरा धन है अब। और फिर कहते हैं, परेर द्रव्य तुमी केन चाह विनाशिते, धर्मा धर्म विचार की बन पार करी। अरे दूसरे का धन विनाश करने का तुम्हारा क्या अधिकार। ठीक है, तो और फिर बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, ऐ शरीर साधिमो आमी बहु प्रयोजन। तुम्हारा शरीर जो है ये मेरा प्रधान साधन है, इससे बहुत सारा कार्य मुझे करना है। तो देखो वो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। ये लक्ष्य, ये भावना जिस भक्त के हृदय में होती है, भगवान ऐसे भक्तों को ही अपने लीलाओं के लिए उपयोग करते हैं, हमें जैसे नहीं। जिनको डर लगा रहता है हमेशा कि कहीं हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना आ जाए, कहीं हमारे भगवान ये दुख का निवारण कर दो, ये दुख का. तो तीन प्रकार के लोग होते. पहला, जब उनके जीवन में जब तो मैनेजमेंट में क्या होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है और मैनेजर आता है, तो उसके पास दो प्रॉब्लम होता है. एक प्रॉब्लम कि मैनेजमेंट भी करना है, कार्य को, कलापों को भी आगे बढ़ाना है. दूसरा, अगर एक का साइड लो, दूसरा नाराज होगा. दूसरा का पक्ष लो, पहला नाराज होगा. पक्ष किसका लो? दोनों का पक्ष नहीं लो, दोनों झगड़ते बैठेंगे. तो फिर एक के पास जाता है, उसको समझाता है, जिसको वो थोड़ा अपना समझता है, जो समझदार है. अब ऐसे व्यक्ति का तीन दृष्टिकोण हो सकता है. पहला, वो तुरंत प्रतिउत्तर कर सकता है कि भगवान, अरे सर, आपने मेरा साइड, उसका साइड क्यों लिया? मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है. झगड़ने लगेगा, मैनेजर के साथ ही झगड़ने लगेगा. ये पहला स्तर, सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी, सीधा झगड़ने लगेगा. ठीक है, कि सही गलत क्या है ये देखने लगे कि आपने मेरा, तो यहाँ पे जैसे पृथु महाराज झगड़ सकते हैं भगवान से, भगवान मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, इंद्र आके गड़बड़ कर रहा है, आप उसका साइड ले रहे, मेरा साइड नहीं ले रहे. ठीक है, जय विजय आके झगड़ सकते हैं, भगवान आपका द्वारपाल हूँ, आपके द्वार पे रक्षण कर रहा हूँ, चतुष्कुमार आए, अगर आपको नहीं रोकना है तो मुझे यहाँ पे खड़ा क्यों किया, सब द्वारपालों को घर भेज दो, अपना कार्य कर रहा हूं और आप मुझे शाप मिला और मेरे को बोल रहे हैं जाओ, क्यों भाई? तो ये झगड़ते हैं, पहला कैटेगरी की झगड़ते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया. दूसरा कैटेगरी के लोग झगड़ते नहीं, लेकिन पकड़ के रखते हैं, बुरा मानते हैं. ठीक है, वो चुप बैठते हैं लेकिन बुरा मानते हैं कि अच्छा नहीं किया, बुरा किया. चुप, प्रतिकार नहीं करते, लेकिन अपने हृदय में पकड़ के बैठते हैं कि कहीं ना कहीं इनके हृदय में पक्षपात है. ठीक है, तो आदर के कारण, सम्मान के कारण चुप तो बैठते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा पक्षपाती तो है. तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग. और तीसरे कैटेगरी के लोग, जब उनकी ओर लेते हैं भगवान या मैनेजर कि अरे यार छोड़ दे, उसको जीतने दे, उसका सही, वही सही, तो ये तीसरे कैटेगरी के लोग खुश हो जाते हैं. अरे इस मैनेजर ने मेरे को इतना करीब समझा कि मेरे को चुप रहने के लिए बोल, ये मुझे अपना समझता है. तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं. तो यहां पे सनातन गोस्वामी, यहां पे जय विजय इस भावना से आनंदित है कि भगवान मुझे अपना समझ रहे हैं. और एक छोटा प्रसंग और लूंगा, उसके बाद अंत करूंगा. तो यही जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि आगे सनातन गोस्वामी बहुत पीड़ित होते हैं, बार बार चैतन्य महाप्रभु उनको जबरदस्ती पकड़ के उनको आलिंगन करते. अब सोचो, आपका शरीर में पूरा रक्त भरा हुआ है, पीप भरा हुआ है, और एक महान तेजस्वी भगवान के जो स्वरूप है, सन्यासी है, वो जबरदस्ती आलिंगन करते हैं, उनका पूरा शरीर दूषित हो जाता है. तो उनको बहुत दुख हो रहा था. सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बार बार चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है. तो जगदानंद पंडित कहते हैं, देखो भगवान ने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए, तो मेरा यही सुझाव है, जाओ वृंदावन. भगवान का तुम्हारे लिए वही सुझाव भी है, रथ यात्रा के बाद वृंदावन चले जाओ. सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले हाँ, ये तो भगवान की भी इच्छा है. और चैतन्य महाप्रभु के पास जाके कहते हैं, भगवान मैं यहाँ पे आया था अपने लाभ के लिए, लेकिन बार बार आप मुझे आलिंगन करते हो, जबरदस्ती पकड़ के मुझे, आपका शरीर पूरा दूषित हो जाता है, मुझे केवल पाप ही मिलेगा, इसलिए जगत रथ यात्रा के पश्चात मैं वृंदावन चले जाऊंगा. तो चैतन्य महाप्रभु और बोलते हैं, जगदानंद पंडित ने भी मुझे ऐसे ही करने के लिए बोला है, मैंने उनसे सुझाव लिया, बहुत अच्छा सुझाव लगा. तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तो जगदानंद पंडित भी महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी आचार्य है. तो भगवान सनातन गोस्वामी को कहते हैं, काली केरब बटुया जग्गा ऐछे गर्वी हैला, તોમાં સબા રેહ ઉપદેશ કરી તે લાગીલા. અરે યે જગા યે જો જગદાનંદ પંડિત હે ઇસકો ઇતના અભિમાન હો ગયા કે તુમ્હારે સમાન વ્યક્તિ કો વો ઉપદેશ દે રહા હે. વ્યવહાર પરમાર્થ તુમી તાર ગુરુ તુલ્ય તુમ્હારે ઉપદેશ હે ન જાને આપને મૂલ. અરે તુમ ઉસકે ગુરુ કે સમાન હો ઓર તુમ્હે વો ઉપદેશ કર રહા હે. યે તો બહોત બાલક હે. અબ સોચો હમ અગર વહાં પર હોતે તો બોલતે અરે ભગવાન ને હમારા સાઈડ લિયા ઉસકો નિંદા કર રહે હે. હમારે મન મેં તો લડ્ડુ ફૂટતે. હમ બોલતે અરે ભગવાન હમારી સ્તુતિ કર રહે હે ઉસકી નિંદા કર રહે હે. ભગવાન હમારા સાઈડ લે રહે હમારા પક્ષ લે રહે હે. યે તો બહોત બડી બાત હે બહોત અચ્છા હે. લેકિન સનાતન ગોસ્વામી દુઃખી હો જાતે હૈ ઓર દુઃખ અવસ્થા મેં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કો ક્યા કહેતે હૈ આજ મુજે અપને દુર્ભાગ્ય કા સીમા પતા ચલ ગયા. આજ મુજે પતા ચલ ગયા કે મેં કિતના દુર્ભાગી હું ઓર જગદાનંદ પંડિત કા કિતના સૌભાગ્ય હૈ. અબ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કન્ફ્યુઝ હો ગયે કે અરે મેને એસા ક્યા બોલ દિયા. તો હવે સનાતન ગોસ્વામી કહેતે હૈ જગદાનંદે પિયાઓ આત્મીયતા શુદ્ધ રસ મોરા પિયાઓ ગૌરવ સ્તુતિ નિંબ નિશિંદ રસ. જગદાનંદ કો તુમે આત્મીયતા કા શુદ્ધ રસ પિલા રહે હો અપના સમજ કે ઉસકો પ્રતાડિત કર રહે હો ઉસકે ઉસકો નિંદા કર રહે હો ઓર મુજે આપ ગૌરવ સ્તુતિ નિંબ નિશિંદ રસ પિલા રહે હો ક્યોંકિ આપ મુજે પરાયા સમજતે હો. તો કહેતે આજી હ જાની લ નાહી લ મોરે આત્મીયતા જ્ઞાન મોરા ભાગ્ય તુમી સ્વતંત્ર ભગવાન. આજ મુજે પતા ચલ ગયા કે મેરા દુર્ભાગ્ય કિતના હૈ ક્યોંકિ તુમ મુજે અપના નહીં સમજતે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બડે લજ્જિત હુએ ઓર કહેતે એસી બાત નહીં હૈ મેં આપકો અપના હી સમજતા હું લેકિન તુમ્હારા સ્તર એસા હૈ તુમ્હારા ગુણ એસા હૈ કે મુજે યે બોલના પડા. તો યે સુંદર લીલા હૈ ઓર બહોત કુછ ઇસમેં બોલા જા સકતા હૈ લેકિન યે જો ભગવાન કે શુદ્ધ ભક્ત હૈ યે એક સંદેશ હમ યહાં પે ઇસ લીલા મેં સુનતે હૈ સમજતે હૈ કે જો ભગવાન કે દિવ્ય શુદ્ધ ભક્ત હોતે હૈ વે ઉનકા એક માત્ર ધન ક્યા હોતા હૈ ભગવાન કે સમીપ જાના ભગવાન સે એક અપનાપન કા રિશ્તા સ્થાપિત કરના ઓર બાકી સબ ઉનકે લિયે તુચ્છ હોતા હૈ. કેવલ એક હી આનંદ હોતા હૈ કે મેં ભગવાન કે સાથ એક સંબંધ સ્થાપિત કરના ચાહતા હું ભગવાન કી પ્રસન્નતા કે લિયે ઓર બાકી સમસ્ત સંસાર સુખ દુઃખ ઉનકે લિયે કોઈ માયને નહીં રખતા. ઠીક હૈ. તો જબ પ્રેમ હોતા હૈ તબ વ્યક્તિ કિસી ભી પ્રકાર કા દુઃખ સહન કર સકતા હૈ. ઠીક હૈ. યદિ આપ એક એક માન લો કે આપ ગહેરી નિદ્રા મેં હો ઓર રાત કો 3 બજે આપકે ઉપર પાણી ડાલ દઉં ઓર આપકો ઉઠાઉં તો આપકો કૈસા લગેગા. આપકો ક્રોધ આયેગા. લેકિન ચલો એક દિન આપ શાંત બેઠોગે અગલે દિન વાપસ આપકે ઉપર પાણી ડાલું આપકો ઉઠાઉં આપકે કાન મેં આગે ચિલ્લાને લગું દૂસરે દિન ભી શાયદ સહન કર લોગે તીસરે દિન વાપસ કરૂંગા તો ડંડા લેકે મારોગે. ઠીક હૈ. લેકિન સોચીએ એક છોટા સા બાલક પ્રતિદિન મધ્ય રાત્રિ મેં વો જોર જોર સે ચિલ્લાને લગતા હૈ મલમૂત્ર ત્યાગ કરતા હૈ અપની માતા કો જોર જોર સે હિલા કે ઉઠાતા હૈ લેકિન ઉસકી માતા કભી ક્રોધિત નહીં હોતી. ક્યોં? ક્યોંકિ પ્રેમ હૈ. તો જબ પ્રેમ હોતા હૈ પ્રગાઢ પ્રેમે રહીએ સ્વભાવ આચાર નિજ દુઃખ વિઘ્ન આદિ ના કરે વિચાર. જબ પ્રેમ પ્રગાઢ હોતા હૈ તો ઉસકા લક્ષણ ક્યા હોતા હૈ કિસી ભી પ્રકાર કા દુઃખ વ્યક્તિ સહન કરતા હૈ. ઠીક હૈ. તો ઇસી પ્રકાર સે યદિ હમે ભગવાન કે પ્રતિ પ્રેમ હૈ વો સંબંધ સ્થાપિત કરેંગે તો ઇસ સંસાર મેં તથાકથિત આદિ દૈવિક આધ્યાત્મિક આદિ ભૌતિક અલગ અલગ પ્રકાર કે જો ક્લેશ હૈ અલગ અલગ પ્રકાર કે જો દુઃખ હૈ ઉસકો સહન કરને મેં ઓર ભગવાન કી ઓર બઢને મેં હમે શક્તિ પ્રાપ્ત હોગી જબ હમ ભગવાન કે ચરણ કમલો કા આશ્રય લેંગે. બહુત બહુત ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો
હેલો ડિસ્કશન મેં એસા યે હોતા હૈ કી मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक युग में स्थान प्राप्त करने की इच्छा रहती है, अभी भक्ति के भी युग में स्थान प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये इच्छा ही है ना फिर दोनों भी?
भक्ति देखो, हर एक व्यक्ति स्वार्थी तो होता है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं स्वार्थी ना हो, कोई भी नहीं, चाहे भक्त हो या अभक्त। लेकिन भक्त का क्या स्वार्थ है? भगवान के प्रेममयी सेवा करना, और ये भक्त का मूल स्वार्थ है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। ठीक है, तो ये भी स्वार्थ है कि मुझे भगवान का भक्ति प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करना है और कुछ नहीं। भगवान मुझे जहां रखे, जैसे रखे, जहां पे भी भेजे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान की सेवा और भक्ति मुझे प्राप्त हो, तो ये इच्छा है। लेकिन ये इच्छा स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी एक तरह से है क्योंकि इच्छा है, लेकिन हाँ। उस प्रकार से स्वार्थ नहीं भी है, क्योंकि ये इच्छा अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो जब कोई स्थान हम प्राप्त करते हैं अपने आनंद के लिए, तो वो भौतिक स्वार्थ है, और जब हम भगवान की सेवा के लिए हम इच्छा करते हैं, तो हमारा वो स्वाभाविक स्वार्थ है, क्योंकि वही हमारा मूल स्वभाव है, सच्चित आनंद, हम भगवान के निज सेवक है। ठीक है, तो उस पोस्ट को, उस पद को प्राप्त करना स्वार्थ नहीं करेंगे, उसको वास्तव में निस्वार्थ कहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वही हमारा मूल स्वभाव है।
तो अभी भक्त के लेवल पे उसको प्रतिस्पर्धा नहीं समझनी चाहिए,
प्रतिस्पर्धा नहीं समझनी चाहिए, ये सब लोग को प्रयास करना चाहिए कि मुझे भगवान स्वीकार करने चाहिए अपनी सेवा के लिए, मुझे भगवान स्वीकार करनी चाहिए अपनी सेवा के लिए। भक्तों की स्पर्धा ऐसी होती है कि भगवान मुझे भी स्वीकार करे, भगवान मुझे भी स्वीकार करे, भगवान मुझे भी कुछ सेवा दो, ये स्पर्धा होती है कि अरे चलो मुझे कुछ सेवा मिल जाए, तो ये भक्तों के बीच में ये आध्यात्मिक स्पर्धा है।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।